Hi students, here I have the next chapter from your book. This is the fifth poem titled The Rime of the Ancient Mariner, written by Samuel Taylor Coleridge. सबसे पहले मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस पोएम की. The Rime of the Ancient Mariner is one of the best known classical poems written in English, containing some very beautiful and memorable lines. तो ये एक यादगार पोयम है. ये बेस्ट नोन क्लासिकल पोयम है, यानी कि जो एंशियंट इंग्लिश लिटरेचर है उसका ये एक बहुत ही अच्छा क्रिएशन है. इट इज अ बैले, दैट इज इट टेल्स अ स्टोरी. सो व्हाट डू वी कम टू नो दैट ऑल्दो ये एक पोयम है, पर इस पोयम में हमें एक कहानी पता चलेगी. इट टेल्स अस अ स्टोरी. एंड व्हाट काइंड ऑफ अ स्टोरी इट इज? इट इज अ लिरिकल स्टोरी. ये जो कहानी है ये ऐसे फॉर्मेट में लिखी हुई है कि इसमें इतने सारे पोएटिकल डिवाइसेस यूज हुए हैं, इसमें राइमिंग यूज हुई है, इसमें एक म्यूजिकल इफेक्ट है. And that is why this story is a poem. Now, ballet poetry usually includes old-fashioned words and spellings. ये जो form है ballet poetry, ये बहुत ही olden times का है. ये एक ancient way है poetry लिखने का, और इसी वजह से इसमें कुछ old-fashioned words हैं. Old-fashioned words means ऐसे words हैं जो कि आजकल हम जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें हम यूज नहीं करते हैं. कुछ ऐसे आपको पुराने टाइप के वर्ड्स मिलेंगे जो कि आप वैसे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज नहीं करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अदरवाइज तो हम जो वर्ड्स सीखते हैं वो हमारे लिए न्यू वर्ड्स होते हैं, बट इस पोएम में हम कुछ एंशियंट और ओल्ड फैशन वर्ड्स सीखेंगे जो कि आजकल हमने बोलने छोड़ दिए हैं. और इसमें कुछ ऐसे स्पेलिंग्स भी देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा अनयूजुअल हैं. अनयूजुअल इसीलिए हैं क्योंकि अब वो हम यूज नहीं करते हैं, वो ओल्ड फैशन है, वो पुराने टाइम के हैं. अब थोड़ा सा टाइटल डिस्कस करते हैं इस पोएम का, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर. ये जो वर्ड है राइम, ये भी अनयूजुअल है. इसके भी जो स्पेलिंग्स हैं ये थोड़े डिफरेंट हैं. एक्चुअली ये वर्ड है राइम, तो जैसा कि मैंने आपको कहा इसमें कुछ ओल्ड फैशन्ड अनयूजुअल स्पेलिंग्स हैं. तो सबसे पहला इंस्टेंस तो हमें टाइटल में ही देखने को मिल जाता है, आर आई एम ई लिखा हुआ है, पर इसके जो एक्चुअल स्पेलिंग्स आज की डेट में हम यूज करते हैं वो है आर एच वाई एम ई. दिस इज राइम. तो जैसे कि टाइटल में ही पोएट कह रहे हैं राइम, सो दिस इज अ poem, it has a musical effect. Further, this is the ancient mariner. तो यहाँ पे जो word है ancient, ये दो चीजें signify करता है. First of all, ancient means that it relates to olden times. पुराने समय के बारे में ये poem लिखी हुई है, बहुत ही old times की poem है. और secondly, ancient का मतलब है the old man. जिस आदमी की ये कहानी है, जो आदमी ये कहानी सुना रहा है वो एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है. एंड द वर्ड मैरिनर, नाउ द वर्ड मैरिनर मीन्स सेलर. एक जो पर्सन शिप पे सेल करता है और समुन्दर में ट्रेवल करता है उसको हम सेलर या फिर मैरिनर भी कहते हैं. So now let's get started. Let us read the poem. Let us see the topics which we will cover in this chapter. First of all, I'll talk about the poet. Then I'll give you a background of the poem. This will be followed by the poem and its explanation. Then there'll be a summary and then the question and answers. So let's get started. First of all, I'll talk about the poet Samuel Taylor Coleridge. He was born in the year 1772 in United Kingdom and he died in the year 1834. Students, this is Samuel Taylor Coleridge. He was an English poet. literary critic and philosopher who, with his friend William Wordsworth, was a founder of the Romantic movement in England. अब विलियम वर्ड्सवर्थ एक और पोएट हैं, ये भी बहुत ज्यादा फेमस थे और ये और सैमुअल टेलर कॉलरिज दोनों फ्रेंड्स थे और इन्होंने इकट्ठे इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट की थी. नाउ व्हाट इज रोमांटिक मूवमेंट? इट इज एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन यूरोप टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी. Romanticism was characterized by its emphasis on emotion and individualism as well as glorification of all past and nature. So basically, ये जो romantic movement थी, इसका aim था emotions और individual के बारे में poetry या writings हैं वो create करना. और वो जो भी past था इनका और जो nature है, यानी कि हमारे आसपास जो natural चीजें हैं, उसको भी ग्लोरिफाई यानी के प्रेज करते थे अपनी राइटिंग्स में. द नोटेड पोएट्स वर विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, पर्सी शेली, विलियम ब्लेक एंड जॉन क्लेयर. तो अब ये जो रोमांटिक मूवमेंट थी, उसके जो फेमस या बहुत ही नोटेड पोएट्स से जो मेंबर्स थे, उनके नाम यहां पर दिए हुए हैं. तो एक तो इन्होंने ये रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट की थी इंग्लैंड में एंड ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द लेक पोएट्स. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लेक पोएट्स? द लेक पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स हु ऑल लिव्ड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लेक डिस्ट्रिक्ट और जितने भी इंग्लिश पोएट्स लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, उस ग्रुप का नाम था लेक पोएट्स. At the turn of the 19th century, they are considered part of the romantic movement. तो यही जो lake poets थे, इन्होंने ही मिलके ये romantic movement भी start की थी. The three main lake poets were William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge and Robert Southey. तो एक तो Samuel Taylor Coleridge थे, एक इनके friend थे William Wordsworth और एक main poet जो lake poets का part थे, वो थे Robert Southey. Samuel's father was the Reverend John Coleridge, the well-respected vicar of St. Mary's Church and headmaster of the King's School. Vicar means priest. जैसे मंदिर में पुजारी होता है, तो चर्च में priest होता है, या फिर हम उसको कहते हैं pastor. तो सैमुअल टेलर कॉलरिज के जो डैड थे, वो चर्च में प्रीस्ट थे और साथ ही साथ वो हेडमास्टर भी थे किंग्स स्कूल के. नाउ हियर आर द फेमस वर्क्स डन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज. हिज फेमस वर्क्स आर द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, व्हिच वी विल बी रीडिंग अहेड, कुबला खान, बायोग्राफिया लिटरेरिया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस. This is an autobiography of the poet which he published in the year 1817 in two volumes. Now let us see the background of the poem. The poem is considered to be one of the greatest poems of English literature. It is written in the form of a ballet. Just now I had told you ballet means that it is a story written in the form of a poem. It consists of 625 lines, so it is very long, it is very lengthy, which have been put in 7 parts. And in this chapter, in class 10th, you will be going through the first and the second part of the poem. It is based on the dream of a friend of the poet. It is a rhyming poem about an old sailor and is set in the olden times. It is a story of sin, punishment and redemption of this ancient mariner. Sin ka matlab ki ancient mariner ne ek koi galat kaam kiya tha jisko hum sin kehte hain aur fir usko uski kya saza mili और कैसे उसने अपना जो गिल्ट है उसको खत्म किया, उसने अपनी सजा पूरी की, ये कहानी है ये एंशिएंट मैरिनर की इस पोएम में. द पोएट कन्वेज द मैसेज. नाउ दिस पोएम कन्वेज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट दोज हु हार्म एंड टॉर्चर अदर्स कैन नेवर हैव पीस ऑफ माइंड. जो लोग किसी और को हार्म करते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उनको तंग करते हैं, उनको कभी मन की शांति नहीं मिलती. द सिनर एज वेल एज दोज हु सपोर्ट अ सिन आर पनिश्ड. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं पोएट कि भगवान पनिश करते हैं कोई भी गलत काम करने वाले को और उन लोगों को भी जो उसका सपोर्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस बिगिन विद द पोएम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम. The poem begins, it is an ancient mariner and he stoppeth one of three. Now, as I told you, इस poem में कुछ ancient words use हुए हैं जिनके spellings थोड़े different हैं. The first ancient word जो आता है वो है stoppeth. Stoppeth means stopped. And mariner means a sailor, a person who goes on the ship into the sea. तो यहाँ पर poet कह रहे हैं कि एक ancient sailor है. Ancient means he is an old man and वो बहुत ही ज्यादा olden times को belong करता है. And he stops one person out of a group of three persons. By thy long grey beard and glittering eye. Now, wherefore stoppest thou me? यहाँ पे फिर से कुछ ancient words आए हैं. सबसे पहले है thy. Thy means your. The next word is wherefore. Wherefore stands for why. Stoppest stands for stopping. Thou means you. And the word glittering means shining brightly with flashing points of light. जो one person है जिसको mariner ने रोका है वो कहता है by your long grey beard. तो long grey beard किसकी है? Mariner की है, ये देख सकते हैं आप. और वो उसको कह रहा है कि तुम्हारी grey लंबी सी दाढ़ी है and glittering यानी कि बहुत ज्यादा brightly shining eyes हैं. और फिर वो पूछता है Why have you stopped me? उसको थोड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो कहीं जा रहा था और रास्ते में इस बूढ़े से ancient mariner ने उसको रोक लिया. Now let us discuss the poetic devices which are there in this piece of the poem. जो सबसे पहला poetic device है वो है alliteration. Alliteration means the repetition of a consonant sound in a series of words. Alliteration can be internal alliteration and it can be initial alliteration. यानि के हो सकता है कि जो initial sound है words का वो repeat हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो middle में sound आता है words के वो repeat हो रहा है. इस piece में alliteration है by thy long grey beard and glittering I. तो यहाँ पे य साउंड रिपीट हो रहा है. अब इस पीस में जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो है इसकी राइम स्कीम. जैसा कि हमें पता है टाइटल, ये एक राइम है तो इसकी एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम है. और इस पीस की राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी थ्री मी. So the repetition is in the second and the fourth line. चलिए आगे पढ़ते हैं. The bridegroom's doors are opened wide and I am next of kin. The guests are met, the feast is set. Mayst hear the merry din. तो यहाँ पे जो person जिसको रोका हुआ है ancient mariner ने वो एक wedding guest है. और वो मैरिनर को कह रहा है कि जो ब्राइड ग्रूम है, जो लड़का है जिसकी शादी होने वाली है, उसके घर के दरवाजे खुले हुए हैं, बिकॉज दे आर रेडी टू बिगिन द वेडिंग सेलिब्रेशंस। और वो कहता है कि मैं नेक्स्ट ऑफ किन हूँ, यानी कि मैं उसका बहुत क्लोज रिलेटिव हूँ, मेरा उस वेडिंग में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। फिर आगे वो कहता है सारे गेस्ट आ गए हैं और फीस्ट यानी कि जो डिनर है वो भी सेट हो गया है। मेस्ट का मीनिंग है मे और डिन का मतलब है जो मेरी म्यूजिक है शादी का, वेडिंग म्यूजिक, वो भी सुनाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि वेडिंग सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाली है। तो वो जो पर्सन है जिसको रोका है मैरिनर ने, वो कहता है कि मैं एक वेडिंग गेस्ट हूँ, मुझे जाना है और मेरी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो लड़का है जिसकी शादी हो रही है उसका एक बहुत क्लोज रिलेटिव हूँ। सब गेस्ट आ गए हैं और फीस्ट भी लग गया है, डिनर भी सेट हो गया है और जो वेडिंग म्यूजिक है वो भी बजने लग गया है और वो सुनाई दे रहा है। अब इस पीस में जो पोएटिक डिवाइसेस आ रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी राइम स्कीम क्या है। इस पीस में हम देख सकते हैं इंटरनल राइम है, राइम इज इंटरनल इन द थर्ड लाइन। द गेस्ट आर मेट, द फीस्ट इज सेट, मेट सेट, दिस इज द इंटरनल राइम इन दिस लाइन। और उसके अलावा जो इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी सी बी, वो भी फॉलो हो रही है। आप देख सकते हैं सेकेंड और फोर्थ लाइन में राइम है किन एंड दिन। नाउ लेट अस रीड अहेड। ही होल्ड्स हिम विद हिज स्किनी हैंड। तो ये ही कौन है? ये सेलर या फिर जो एंशियंट मैरिनर है उसकी बात हो रही है। पोएट कह रहे हैं कि वो जो वेडिंग गेस्ट है उसको पकड़ लेता है अपने स्किनी हैंड से। स्किनी हैंड मीन्स वो बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ज्यादा पतला है, लेकिन उसके हाथों में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। वो कस के इस वेडिंग गेस्ट को पकड़ लेता है और उसको रोक लेता है वेडिंग में जाने से। और फिर वो कहता है देयर वॉज अ शिप कोथ ही। नाउ हियर कोथ इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट वर्ड, इसका मीनिंग है सेड। सो द एंशियंट मैरिनर सेज देयर वॉज अ शिप। नाउ इन दो लाइंस में हमें पता लगता है कि जो एंशियंट मैरिनर है वो फोर्स के साथ जबरदस्ती इस वेडिंग गेस्ट को रोक लेता है और वो उसको अपनी स्टोरी बताने लग जाता है। वो उसको कहता है देयर वॉज अ शिप, तो वो उसको कोई पास्ट की कहानी सुनाना शुरू कर रहा है। होल्ड ऑफ, अनहैंड मी, ग्रे बियर्ड लून एफसून्स हिज हैंड ड्रॉप्ड ही। अब इसमें सबसे पहले कोई कह रहा है होल्ड ऑफ, यानी कि जो वेडिंग गेस्ट है वो एकदम से रिटेलिएट करता है, वो अपोज करता है इस सेलर को। वो सेलर को कहता है कि मुझे छोड़ दो। जो यहां पर हमें पता लगता है कि सेलर उसको होल्ड कर लेता है अपने स्किनी हैंड से, तो यहां पर हमें पता लगता है कि वो जो वेडिंग गेस्ट है वो रिवोल्ट करता है। वो सेलर को कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, अनहैंड मी। अनहैंड मीन्स कि जो तुमने मुझे कस के अपने हाथ से पकड़ा हुआ है उसको छोड़ दो, रिलीज कर दो मुझे। और फिर वो उसको कहता है ग्रे बियर्ड लून। लून मीन्स अ मैड पर्सन। सो दिस वेडिंग गेस्ट एड्रेसेस द सेलर एज अ लून, एज अ मैड पर्सन। वो उसको कहता है कि तुम पागल हो जो तुमने मुझे इतनी जोर से कस के पकड़ा हुआ है और मुझे छोड़ दो। एफसून्स मीन्स एट वंस, his hand dropped he. So the word dropped is also an ancient word, it means dropped. तो यहां पर poet कहते हैं कि जैसे ही wedding guest revolt करता है और वो sailor को एक पागल आदमी बोलता है, एकदम तभी sailor अपना हाथ नीचे गेर देता है। तो जो उसने कस के पकड़ा हुआ था wedding guest को, वो उसको छोड़ देता है। अब इस पीस में देखते हैं कौन से पोएटिक डिवाइसेस आ रहे हैं। सबसे पहले हम इस पीस की राइम स्कीम देखते हैं। इसकी राइम स्कीम भी ए बी सी बी है. ही तो ये राइम हो रहे हैं. नाउ लेट अस रीड अहेड. ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई. तो ये जो वर्ड है ग्लिटरिंग आई, ये सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है. दिस इज अ पोएटिक डिवाइस ऑफ रेपिटिशन. पोएटिक डिवाइस ऑफ रेपिटिशन का बेसिक पर्पस ये होता है किसी चीज को जब आप एम्फसाइज करना चाहते हो. तो हमने पहले भी एक जगह देखा था ग्लिटरिंग आई यूज हुआ है, और ये दूसरी बार है कि पोएट कह रहे हैं ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई. नाउ हु इज ही? ही इज द सेलर. और वो किसको पकड़ रहा है अपनी ग्लिटरिंग आई से? वेडिंग गेस्ट को. द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल. तो अब जैसा कि सेलर ने अपना हाथ तो छोड़ दिया है, उसने जो वेडिंग गेस्ट को कस के पकड़ लिया था, लेकिन अब पोएट कहते हैं कि उसकी जो आईज हैं, जो ग्लिटरिंग शाइनिंग आईज हैं सेलर की, उन्होंने वेडिंग गेस्ट को जैसे कि कैप्चर कर लिया है, हिप्नोटाइज कर लिया है, क्योंकि वो वेडिंग गेस्ट वहीं पर खड़ा हुआ है चुपचाप. एंड लिसन्स लाइक अ 3 years child. The mariner hath his will. तो इन दो लाइन्स में पोएट कह रहे हैं कि जो वेडिंग गेस्ट है वो चुपचाप खड़ा होकर मैरिनर की बातें सुन रहा है, जैसे कि 3 साल का छोटा बच्चा खड़े होकर किसी की बातें सुनता है. द मैरिनर हेथ हिज विल. हेथ का मीनिंग हैज. तो फाइनली जो मैरिनर था उसने जो चाहा था वो ही हो रहा था. मैरिनर वॉन्टेड दैट द वेडिंग गेस्ट शुड लिसन टू हिम. एंड नाउ फाइनली ऑल्दो ही हैज लेफ्ट हिम, स्टिल हिज आईज हैव कैप्चर्ड हिम एंड ही इज बीइंग हिप्नोटाइज्ड एंड ही इज स्टैंडिंग देयर एंड लिसनिंग टू द मैरिनर. एंड सो फाइनली जो मैरिनर चाहता था वो ही हो रहा है. वेडिंग गेस्ट एक 3 साल के छोटे बच्चे की तरह खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा है. अब इस पीस में देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस कौन से आए हैं. सबसे पहले हम देखेंगे इस पीस में फिर से एलिट्रेशन यूज हो रही है. मैं आपको बता चुकी हूं एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो यहां पर एलिट्रेशन यूज हो रही है ही होल्ड्स हिम. जो हर साउंड है वो रिपीट हो रहा है. सेकेंड पोएटिक डिवाइस मैं आपको बता चुकी हूं वो है रेपिटेशन का. और यहां पे ये वर्ड्स ग्लिटरिंग आई रिपीट हो रहे हैं इस पोएम में. थर्ड पोएटिक डिवाइस जो इस पीस में है वो है सिमिली. सिमिली इज अ कंपैरिजन. एक कंपैरिजन जब आप ड्रॉ करते हैं दो चीजों में उसको हम सिमिली कहते हैं. और जनरली सिमिली में लाइक या फिर एज का यूज होता है. तो यहां पर जब वो कह रहे हैं लाइक अ 3 years चाइल्ड, दिस इज अ सिमिली. यहां पर पोएट वेडिंग गेस्ट को और एक 3 year old बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं. वो कहते हैं कि वेडिंग गेस्ट चुपचाप खड़ा होकर सेलर की बातें सुन रहा था, जस्ट लाइक एक 3 साल का बच्चा होता है. लेट अस रीड द नेक्स्ट स्टैंजा. द वेडिंग गेस्ट सैट ऑन अ स्टोन. ही कैनॉट चूज बट हियर एंड दस स्पेक ऑन दैट एंशियंट मैन द ब्राइट आइड मैरिनर. अब यहां पे एक अनयूजुअल वर्ड है स्पेक, विच इज स्पोक. तो यहां पर पोएट कह रहे हैं कि जो वेडिंग गेस्ट था वो चुपचाप एक स्टोन के ऊपर बैठ गया और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, जस्ट टू सिट देयर एंड लिसन टू दिस मैरिनर. और जब वो चुपचाप बैठ गया तो जो एंशियंट मैन है, जो सेलर है बूढ़ा सा, वो बोलने लग गया. और वो फिर से एक बारी कहते हैं द ब्राइट आइड मैरिनर. अगेन द पोएट इज रेफरिंग टू द ब्राइट आईज ऑफ द मैरिनर. अब इस पीस में पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं. सबसे पहले तो इसकी राइम स्कीम क्या है. इसकी राइम स्कीम भी ए बी सी डी है, आप देख सकते हैं हियर मैरिनर, तो फिर से यहां पर राइम हो रहे हैं ये दो वर्ड्स. देयर इज वन मोर पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पीस, दैट इज रेपिटेशन. जब हम आगे जाएंगे पोएम में तो हम देखेंगे कि ये जो वर्ड है ब्राइट आइड मैरिनर, ये भी रिपीट हो रहा है. सो द पोएट इज रिपीटिंग बोथ ऑफ दीज फ्रेजेस, ही सेइंग ग्लिटरिंग आई अगेन एंड अगेन, एंड ही इज ऑल्सो सेइंग ब्राइट आइड मैरिनर बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ले स्ट्रेस ऑन द ब्राइट आईज ऑफ दिस ओल्ड सेलर. लेट अस रीड फर्दर. द शिप वॉज चीयर्ड, द हार्बर क्लियर्ड, merrily did we drop below the kirk, below the hill, below the lighthouse top. तो अब ये ancient mariner है, अपनी story continue करता है. वो कहता है the ship was cheered, यानी कि सब लोग ship को goodbye कह रहे थे और उसको all the best of luck wish कर रहे थे जब वो ship हार्बर से निकली. और वो कहता है शिप को सेल करने के लिए हार्बर को खाली कर दिया गया था, हार्बर वॉज क्लियर्ड सो दैट द शिप कुड स्टार्ट सेलिंग. एंड ही सेज मेरिली डिड वी ड्रॉप, तो कहता है बहुत खुशी खुशी हमारी जो शिप थी वो समुन्दर में चली गई. ड्रॉप हियर मीन्स के हार्बर से निकलकर सी में उनकी जो शिप है वो सेल करने के लिए निकल पड़ी. बिलो द कर्क, कर्क मीन्स द चर्च, बिलो द हिल, बिलो द लाइट हाउस टॉप. तो वो कह रहा है कि जहां पर उनकी शिप थी हार्बर में, वहीं पर ऊपर एक पहाड़ी थी जिसके ऊपर एक चर्च था और वहीं समुन्द्र में लाइट हाउस भी था. तो यहां पर सेलर सीन डिस्क्राइब कर रहा है उस हार्बर का जहां से उनकी शिप सेल करना शुरू हुई थी. वो कहता है कि वहां पर पहाड़ी के ऊपर एक चर्च था और वहां समुन्द्र में एक लाइट हाउस भी था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द पोएटिक डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड इन दिस पीस. द फर्स्ट वन इज देयर इज एन इंटरनल राइम. इन द फर्स्ट लाइन चीयर्ड क्लियर्ड, दिस इज एन इंटरनल राइम. अदर देन दिस the rhyme scheme of this piece is also a b c b. You can see drop top, so this is the rhyme in this piece. Now let us read the next stanza. The sun came up upon the left, out of the sea came he, and he shone bright, and on the right went down into the sea. अब यहां पर सेलर कहता है कि जब उनकी शिप सेल करना शुरू हो गई तो थोड़ी देर के बाद उनकी लेफ्ट साइड से सन आ गया ऊपर आसमान में और वो ऐसे लग रहा था कि वो सी में से ऊपर बाहर निकल रहा है. और वो यहां पर ही किसको कह रहा है? सन को. और फिर वो कहता है ही शोन ब्राइट, सो ही इज अगेन द सन. वो कहता है कि सन बहुत ब्राइट शाइन कर रहा था और फिर थोड़ी देर के बाद वो राइट साइड पर समुन्दर में वापस चला गया, यानी कि सन सेट हो गया. अब इस पीस की भी जो राइम स्कीम है वो फिर से ए बी सी बी ही है. हम देख सकते हैं ही सी ये राइम हो रहे हैं. देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड इन दिस पीस, दैट इज कॉल्ड personification. Personification का मतलब ये होता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसी एट्रीब्यूट देना लिविंग बींग्स की तरह उसको ट्रीट करना. तो यहां पर जो नॉन लिविंग थिंग है वो है सन. और जब वो सन को ही कह रहे हैं तो वो उसको personify कर रहे हैं. This is a poetic device. Another poetic device which is used in this piece is of repetition. आप फर्दर देखेंगे पोएम में कि ये जो सेंटेंस है आउट ऑफ द सी केम ही, दिस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स इन द पोएम. ऑल्सो दिस सेंटेंस वेंट डाउन इन टू द सी, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड. सो देर आर टू इंस्टेंसेज ऑफ रेपिटेशन इन दिस पीस, आउट ऑफ द सी केम ही एंड वेंट डाउन इन टू द सी. नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट पीस.